हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 54 महल से बाहर निकलकर जाने से पहले महाराज ने वीरेश को समझाते हुए कहा, वीरेश, तुम्हारी सहायता और तुम्हारा आदेश मानने के लिए ये सारे सिपाही यहां पर ही रहेंगे और मेरे परिवार की सुरक्षा अभी तुम्हारे हाथ में है। इन सब की रक्षा के लिए तुम्हें जो भी करना है तुम वो करने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन रानी और राजकुमारी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। राजा की आंखों में देखते हुए वीरेश ने बहुत ही मजबूती से कहा, जी महाराज, आप निश्चिंत रहिए, मैं अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा और अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो अपनी जान देकर मैं राजकुमारी और राज परिवार की रक्षा करूंगा, क्योंकि यही मेरा कर्तव्य और धर्म है। इस बात को बोलते हुए वीरेश की आंखों में गंभीरता एकदम साफ नजर आ रही है। राजा को भी उस पर पूरा विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन राजा का विश्वास वीरेश पर नहीं लेकिन उसके गुरुजी पर है, जो उन्हें पूरा विश्वास दिलाकर वीरेश को यहां पर छोड़कर गए थे और वसुंधरा को उसकी निगरानी में रखने के लिए कहा था। राजा सेनापति और बाकी सिपाहियों के साथ वहां से बाहर आ गया और उनके वहां से जाने के बाद वीरेश एकदम ही पीछे की तरफ मुड़ा और उसने तुरंत ही अपनी शक्तियों को जागृत करना शुरू किया। उसकी आंखें चमकने लगी थी और वो धीमी आवाज में मन ही मन कोई मंत्र पढ़ रहा था। तभी उसने एकदम से अपनी आंखें बंद किया और उसके आसपास चारों तरफ एक हल्के सुनहरे रंग का घेरा बन गया था, जो कि वीरेश के साथ साथ उस कमरे को भी घेरे हुए था जिसके आगे वो खड़ा था। वहां पर खड़े सैनिकों को ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वो सब सिर्फ एक साधारण सैनिक थे और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, लेकिन वीरेश को अपने आसपास बहुत कुछ महसूस होने लगा था। अब तक तो वो ये समझ रहा था जैसे कि राजा के दुश्मन ने उन पर हमला किया है, लेकिन अभी उसे कुछ अलग महसूस हो रहा था और वो समझ गया कि महल की तरफ कोई तो खतरा बढ़ रहा है और ये अनजान खतरा जिससे अब तक उसका सामना नहीं हुआ है, लेकिन आज शायद उन दोनों शक्तियों का आमना सामना होने वाला, जिसके लिए वीरेश खुद को पूरी तरह से तैयार कर रहा है। कमरे के अंदर, माँ, ये सब क्या हो रहा है? हमें बहुत ही अजीब लग रहा है और अचानक से आधी रात के वक्त इस वक्त ये सब, पिताजी और भाई सब लोग ठीक तो होंगे ना? वो लोग महल से बाहर क्यों जा रहे हैं? क्या वो लोग हमारे साथ यहाँ पर ही नहीं रुक सकते? वसुंधरा अपनी माँ का हाथ पकड़कर बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोली। चंद्रिका भी एकदम हैरान परेशान सी ही उसके पास ही वहां पर इधर से उधर चल रही है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बेचैन है। लेकिन वसुंधरा की ये बात सुनकर चंद्रिका ने टहलना बंद किया और वसुंधरा के पास ही आकर खड़ी हो गई। रानी ने वसुंधरा को समझाते हुए कहा, नहीं वसुंधरा, वो लोग हमारे साथ यहाँ पर नहीं रुक सकते, क्योंकि उनका फर्ज हमारे राजमहल और हमारे राज्य के लोगों को बचाना है। राजा का ये कर्तव्य होता है और तुम्हारे पिता भाई दोनों को अपना कर्तव्य निभाना है और साथ में हमारी रक्षा भी करनी है। इसके लिए तुम हमसे वादा करो, तुम हमारी अनुमति के बिना यहां से कहीं भी नहीं जाओगी। अपनी माँ महारानी कादंबरी की बात सुनकर वसुंधरा एक टक बिना पलके झपकाए उनकी तरफ ही देखने लगी और फिर उसने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया। उसने अभी भी अपनी माँ का हाथ कैसे पकड़ा हुआ है और इसी बीच महल के बाहर से आती वो भयानक आवाजें उसके दिल को जैसे चीर रही हैं और उसे वो आवाजें बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही हैं, क्योंकि ऐसी आवाजें अपने बचपन से लेकर आज वो पहली बार ही सुन रही है, क्योंकि जब से वो बड़ी हुई है तब से आज पहली बार ही उनके राज्य पर इस तरह से हमला हुआ है, इसलिए उसे इन सब की बिल्कुल भी आदत नहीं है और वो लगभग रोने वाला जैसा मुंह बनाकर बैठी है। वसुंधरा को देखकर समझ नहीं आ रहा कि वो डरी हुई है या फिर परेशान, लेकिन फिर भी चंद्रिका उसके पास बैठी और चंद्रिका ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाया, राजकुमारी, आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है, हम सब यहाँ पर हैं ना आपके साथ, आपको कुछ भी नहीं होगा। हमें अपनी चिंता नहीं है चंदा, हमें सबकी फिक्र है, हम नहीं चाहते कि हमें बचाने के लिए किसी को भी कुछ हो। इससे तो अच्छा होगा अगर वो लोग हमारे लिए इस तरह से हमला कर रहे हैं तो फिर सिर्फ हमें ही नुकसान पहुंचे, बाकी किसी को नहीं। वसुंधरा ने बहुत ही ज्यादा समझदारी दिखाते हुए ये बात की तो चंद्रिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और रानी कादंबरी ने भी उसकी बात सुन ली। उन्होंने वसुंधरा को डांटते हुए कहा, वसुंधरा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि तुम्हारे माता पिता भाई और हमारी इतनी बड़ी सेना के रहते कोई तुम्हें जरा सा भी नुकसान पहुंचा पाएगा, इसलिए इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। हमें माफ कर दीजिए माँ, हमें बस आप सब लोगों की चिंता है, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी और को तकलीफ पहुंचे, वसुंधरा ने सिर नीचे झुकाकर अपनी तरफ से सफाई पेश करते हुए कहा। उसकी ऐसी बातें सुनकर रानी माँ उसे और कुछ भी समझा रही हैं। तभी उस कमरे के अंदर एक अजीब सी तेज रोशनी हुई और सभी का ध्यान उस रोशनी की तरफ हुआ। वो सब लोग जो आपस में एक दूसरे को समझाते हुए बातचीत कर रही थी, सारी औरतें एकदम ही चुप हो गईं। और तभी एक बड़ा सा सुनहरा गोला कमरे के एकदम बीच में होता हुआ छत से जा लगा और उससे उनके चारों तरफ एक बड़ा सुनहरा घेरा बन गया। लेकिन वो सबको नजर नहीं आ रहा था और उन्हें बस एक हल्की रोशनी थी वहां कमरे में नजर आई। और ये देखकर उन सभी की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। उन सभी औरतों ने एक दूसरे की तरफ देखा और इस बारे में सोचने लगी। वो सब परेशान होकर कमरे के एकदम बीच में आ गई और वहां पर कुल मिलाकर चार लोग हैं, रानी कादंबरी, उनकी खास सेविका सुरभि और राजकुमारी वसुंधरा के साथ चंद्रिका। इसके अलावा बाकी सारी सेविकाएं वहां से दूर खड़ी हुई हैं उन लोगों की सुरक्षा के लिए। ठीक उसी समय वीरेश कमरे के अंदर आया और उन लोगों को ऐसे डरा सहमा हुआ देखकर उसने उन लोगों से कहा, अरे आप लोगों को ऐसे डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ आपकी सुरक्षा के लिए है और इसके रहते कुछ भी कोई काली शक्ति या कोई जादू आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन बस आपको उनको ध्यान रखना है कि जब तक ये सब कुछ खत्म नहीं हो जाता आप में से कोई भी इस कमरे के बाहर कदम ना रखें, क्योंकि मैंने इस कमरे की सुरक्षा में ही अपनी सारी शक्तियां खर्च कर दी हैं और अभी मेरा पूरा ध्यान भी इसी तरफ ही है। इसलिए अगर कोई भी इधर उधर जाता है तो उस पर मेरा ध्यान नहीं जा पाएगा, क्योंकि मैं सबसे पहले राजकुमारी वसुंधरा को ही बचाऊंगा, जैसे कि आप सबको पता है। वीरेश की बात सुनकर रानी ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, यही तुम्हारा काम है, इसलिए तुम यही करो बिना किसी झिझक के। कहानी जारी है। किसने हमला किया है महल पर और कौन सी शक्तियों को महसूस कर पा रहे हैं वीरेश और वसुंधरा, और क्या है रहस्य उसे हर पत्थर का, और क्या वीरेश वसुंधरा की रक्षा करने में कामयाब हो पाएगा, और कैसे लगे हैं वीरेश को वो जख्म, जानने के लिए पढ़ते रहिए।